नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् हरे कृष्ण अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु रास रासेश्वर राज राजेश्वर गोपी प्राण धन नंद नंदन भगवान से कृष्ण चंद्र की महती कृपा करुणा से जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवत सेवा भगवत प्रेम प्राप्ति अर्थम उनके अभिन्न वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत के आश्रय में श्री धाम वृंदावन में इस नवरात्रि के महोत्सव पर हम सब एकत्रित हुए हैं, यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। आइए इसी प्रसंग में हम लोग श्रवण करेंगे भक्त प्रह्लाद जी का चरित्र। भक्त एवं भक्त पिता हिरण्यकश्यपु, उनके मध्य क्या वार्तालाप हुआ था, जो क्रम चल रहा है इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्लोक का पाठ करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंध 7 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 11। श्री हिरण्यकश्यपु उवाच जो गाली देता है उसके नाम पे श्री लगा हुआ है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, यही परंपरा है। श्री हिरण्यकश्यपु उवाच व्यक्तम त्वं मर्तु कामोसि यो अतिमात्रं विकथ्यसे मुमूर्षुणां हि मन्दात्मन् ननु शूर विप्लवा गिरः व्यक्तं त्वं मर्तु कामोसि यो अतिमात्रं विकथ्यसे मुमूर्षूणां हि मन्दात्मन् ननु स्युर् विप्लवा गिराः। हिरण्यकश्यपु उवाच, थोड़े आगे आगे आ जाओ। श्री हिरण्यकश्यपु उवाच वर प्राप्त हिरण्यकश्यपु ने कहा, व्यक्तम बिल्कुल स्पष्ट है, त्वम त्वम तुम मर्तु कामाः मृत्यु के इच्छुक असि हो, यः जो अतिमात्रम असीम सीमा मर्यादा अतिक्रमण करते हुए विकथ्य से डिंग मार रहे हो, मानो तुमने इंद्रियों जीत ली हो और तुम्हारे पिता ने न जीती हो। मुमूर्षुणाम, तुरंत ही मरने वाले व्यक्तियों का ही निसंदेह मंदात्मन, हे मंद धूर्त। ननु निश्चय ही शिव हो जाते हैं विक्लवाह उठपटांग, गिराह शब्द। हिरण्यकश्यप ने उत्तर दिया, अरे धूर्त, तू मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहा है, मानो तुम मुझसे अधिक इंद्रिय संयमी हो। यह अति बुद्धिमता है, अतः मैं समझ रहा हूं कि तुम मेरे हाथों ही मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की उठपटंग बातें वही करते हैं जो मरणासन्न होते हैं। तात्पर्य, हितोपदेश में कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह उसका लाभ न उठाकर उल्टे और अधिक क्रुद्ध हो जाता है। प्रहलाद महाराज जी के प्रामाणिक उपदेशों को उसके पिता हिरण्यकश्यप ने सत्य करके नहीं माना, प्रत्युत वह शुद्ध भक्त एवं महान पुत्र पर अधिकाधिक क्रुद्ध हो उठा। ऐसी कठिनाई हमेशा उत्पन्न हो जाती है जब कोई भक्त हिरण्यकश्यप जैसे व्यक्तियों को, जो धन तथा स्त्रियों द्वारा आकृष्ट होते हैं, कृष्ण भावना मृत का उपदेश देता है। हिरण्य का अर्थ होता है सोना और कश्यप का अर्थ होता है बढ़िया गद्दा। यही नहीं, पिता कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र उसे उपदेश दे, विशेष रूप से यदि पिता असुर हो। किंतु प्रहलाद महाराज जी का वैष्णव उपदेश अप्रत्यक्षत उनके आसुरी पिता पर फलित हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकश्यप कृष्ण तथा उनके भक्त के प्रति अत्यधिक ईर्ष्या के कारण अपने मारे जाने के लिए नरसिंह देव को शीघ्रता से बुला रहा था। इस प्रकार वह साक्षात भगवान द्वारा मारे जाने के लिए तेजी ला रहा था। यद्यपि हिरण्यकश्यप असुर था, किंतु यहां उसे श्री शब्द से पुकारा गया है, क्योंकि उसका इसका उत्तर यही है कि सौभाग्यवश उनका पुत्र प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत था। इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वह भगवत धाम लौटेगा। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण, आप सब भक्तों का स्वागत है। आज हमें हिरण्यकश्यप बनना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप उवाच, प्रभुपाद जी कहते हैं हिरण्यकश्यप असुर था, लेकिन उसका भाग्य यही था कि उनके परिवार में और उनसे एक महाभागवत ने जन्म लिया था, इसलिए वो भाग्यशाली। श्री शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। श्री का अर्थ होता है सौंदर्य, श्री का अर्थ होता है विद्या, श्री का अर्थ होता है संपत्ति। ये तीन मुख्य अर्थ तो हो सकते हैं। श्री राधा रानी, श्री संपत्ति, सुंदरता, सद्भाग्य, सद्विद्या, इसके स्वामिनी है श्री राधा रानी। इसलिए श्री कृष्ण राधा के साथ कृष्ण श्री कृष्ण, प्रत्येक नाम से पहले भारतीय परंपरा में श्री शब्द तो जरूर जुड़ा जाता है, श्रीमान शब्द तो जरूर जुड़ जाता है, भले ही हो परम कांगला क्यों ना हो। श्रीमान धनेश्वर दास होता होगा परम कंगाल, लेकिन श्री शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है। श्रीमद् भागवतम, भले ही पिता असुर हो लेकिन बेटा अगर अच्छा है वो सद्भाग्य है। अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रियः, उन ब्राह्मणों ने आत्मश्लाघा किया, अपनी प्रशंसा की, हम कितने भाग्यवान है, क्यों तुम्हारी जैसी स्त्रियां हमें प्राप्त हुई। यज्ञ पत्नियों का उद्धार प्रसंग, ब्राह्मण पहले अपने आप को भाग्यशाली नहीं मानते थे, बहुत यज्ञ करने वाले थे, वेदों की ऋचाएं उनके कंठस्थ थी, फिर भी वो श्री कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते थे क्योंकि उन्हें सदैव कंस का भय सता रहा था। परंतु जो अवला दुर्बला स्त्रियां थी, उनकी पत्नियां थी, जब कृष्ण ने उन्हें कुछ भिक्षा करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए अपने मित्रों को भेजा था, ब्राह्मणियों ने उन्हें भिक्षा नहीं दी, ब्राह्मणियों ने अपने मस्तक पर वो समस्त भोजन भांड को धारण करते हुए वन की ओर प्रस्थान कर गई। हे कृष्ण, तुमने भिक्षा मांगी है, हम समस्त रोसई तुम्हारे सामने ले आए। श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करने के उपरांत उन स्त्रियों से कहा, अब घर चली जाओ। पर आर्य मर्यादित नारियां उत्तर देने लगी, हे कृष्ण, हे केशव माधव, हमारी यहां की परंपरा है, एक स्त्री एक कुलवधु दहली पार करती है तो पुनः मर्यादा में वापस नहीं आ सकती, हमारे पत्नी हमें और ग्रहण नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे भामिनी, तुम इस समय अपने घर लौट जाओ और तुमको अनुभव हो जाएगा, अविलंब अनुभव होगा, तुम्हारे पति जैसे प्यार करते थे पहले, तुमसे अधिक प्यार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे रंग लेकर के जा रही हो, मैं सबकी आत्मा मैं ही हूं, मेरे भाव से तुम भावित हो। और सचमुच यही हुआ, सचमुच यही हुआ। अहो वयम धन्यतमा येषाम नस्तादृशी स्त्रियः, आप जैसे पत्नियों को पाकर के हम ब्राह्मणों का जन्म धन्य हो गया, धन्य हो गया। आपके सत्संग के प्रभाव से, आपके संगति के कारण हमारी मति, हमारी बुद्धि हरि में निश्चल होने लगी, निश्चला मति। इसलिए प्रभुपाद जी सबसे पहले इसी भाव को उद्धार करते हैं। अंत में श्री हिरण्यकश्यपु वाच, हम चाहे कैसे हो पर हमारे पुत्र अगर भक्त हो जाए, कुलम पवित्रम जननी कृतारथा वसुंधराते नवसतीश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितेषाम ये साम कुले वैष्णव नाम धेया। बोले वो कुल पवित्र हो जाता है, वो परंपरा धन्य हो जाती है, वो धरित्री सुधन्य हो जाती है, उस माता की कोख, माता का गर्भ, उनका गर्भ धारण करना सार्थक हो जाता है, समस्त समाज प्रकाशित हो जाता है, स्वर्ग में पितर धन्य धन्य करते हैं, साधु साधु कहते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। हमारी परंपरा में, हमारे कुल में, हमारे खानदान में एक वैष्णव संतान ने जन्म लिया है। नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितेषाम येषाम कुले वैष्णव नाम धेय। मंद कर्म करके मंद भाग्य के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो दुखी कर देता है। जो व्यक्ति अपने पितरों को दुखी करता है उसका परिवार सदैव दुखी रहता है। इस पितृ पक्ष में हम हरिद्वार गए थे श्राद्ध तर्पण करने के लिए, वो पंडित जी जो सारा मंत्र बोल रहे थे वो सारा भावनात्मक था। हे पितरों, जो भी मैंने कुछ गलतियां करी है आप मुझे क्षमा कर दीजिए और हमें शक्ति दीजिए, हमें साहस दीजिए, हमें धैर्य दीजिए, आगे हमसे कोई चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तब पितर प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद जी जैसे भक्त है भगवान उनको आगे वरदान देंगे। प्रहलाद चुम्हारे जैसे भक्त जहां जन्म लेता है वो एक पिता क्या त्रिसप्त भी पिता पुतः उनकी 21 पीढ़ी का उद्धार में कर देता हूं, वो देश वो धरा पवित्र हो जाता है। श्री हिरण्यकश्यप वाच। इसलिए प्रत्येक समाज हरेक समाज का व्यक्ति को चाहिए, भले ही वो भक्त है ना हो, है चाहे ना है, लेकिन उनकी संतान उनके संबंधी कोई भक्त हो जाए फिर तो कहना क्या। स्वयं भक्त हो और उनके संतान भक्त हो फिर तो कहना क्या है, सोने पे सुहागा है। पर वो हिरण्यकश्यप आज प्रबल रोष में है। क्या कहा, व्यक्तम तुम मर्तु कामोसी जो अतिमात्रम विकथ्य से मुमूर्षुणाम हे मंदात्मन नानोश्युर विप्लवागिरः। तो बड़ा उठपटंग बात करता है रे प्रहलाद, तू जानता नहीं किसके सामने तू खड़ा हुआ है और किससे बात कर रहा है। तेरा पिता है त्रिलोकी विजयी, तो उनके सामने बिना सिर पैर की बात। मुझे पता चल गया, व्यक्तम स्पष्ट हो गया, तुम मरतु कामोसी, तुम मरेगा, तुम मरने की चाहत रख रहा है, तुम मरने की इच्छा करता है। मरतु कामा, मरतु काम माने मृत्यु की इच्छा, काम माने इच्छा, मृत्यु माने मरना। हिरण्यकश्यप कहता है तू मरना चाहता है। मित्रों, इस अध्याय के प्रारंभ में श्रीधर स्वामी जी भाव देते हैं, तीन भाव। इस अध्याय में प्रहलाद महाराज जी को मारने के लिए जैसे हिरण्यकश्यप ने सारा प्रयास कर लिया था, उसकी तो मृत्यु हो ही नहीं, जिसने अमरत्व का वरदान ब्रह्मा से प्राप्त किया था वो मारा गया, नंबर वन। नंबर टू, प्रहलाद महाराज में कितना धीरज, कितना धैर्य, कितना शांत विग्रह प्रहलाद महाराज, कितने सारे सद्गुण प्रहलाद जी में हैं। उस प्रहलाद जी की रक्षा भगवान खंबे फाड़ करके नरसिंह अवतार लेकर के करते हैं। अर्थात जिसको हिरण्यकश्यप जो त्रिलोक विजयी इंद्र चंद्र वरुण गंधर्व चारण जिनके अधीनस्थ सेवा करते थे, नारद आदि तुम्बर आदि गंधर्व आदि जिनके यशो गायन करते थे, वो हिरण्यकश्यप उसको मारना चाहता था लेकिन नहीं मार सका, नहीं मार सका, स्वयं मारा गया। यही है सिद्धांत, जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए, कोई भी कितना शक्तिशाली क्यों ना हो अनंत के दास का बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज जी ने अनंत के आश्रय भूता, उनके आश्रय लिया था उन्होंने, इसलिए हिरण्यकश्यप हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी शक्ति, यहां तक माया महामाया शक्ति जिसको भगवान ने कहा दैवी ऐसा गुणमयी, वो भी उसको मार नहीं सकती, वो उनकी सहायता करती है। और तीसरी बात, नरकेसरी भले ही हिरण्यकश्यप को मार देते हैं, बाहर प्रबल क्रोध प्रकट करते हैं, लेकिन उनके भीतर उनके हृदय में ओ हो सुधा सिंधु की बहनी है,
सुधा सिंधु का प्रभाव हो रहा था। बाहर क्रोध है लेकिन भीतर क्रोध नहीं है, ऐसा श्रीधर स्वामी का मत है। बाहर क्रोध, भीतर बिल्कुल शांत विग्रह, अमृत की धारा है, कल्याण की कामना है। भगवान किसी का अकल्याण कर ही नहीं सकते, वो चाहेंगे भी नहीं कर सकते। वो हिरण्यकश्यपु का कैसे कर सकते थे, और वो तो उनके नित्य दास। और चौथी बात है, तीन जन्मों का जो उन्होंने शर्त रखी थी जय विजय, दोनों ने एक जन्म को समाप्त किया और दो जन्म, ये चार बात इस अध्याय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाता है। पर इसी श्लोक में हिरण्यकश्यपु सीधा चुनौती दे रहा है, व्यक्तम तुम मर्तु कामोसी जो अतिमात्रम विकथ्य से। अतिमात्रा माने, मात्रा माने सीमा, मात्रा माने मर्यादा। तुम अमर्यादित बात कर रहे हो प्रहलाद। क्या अमर्यादित बात? तू अपने पिता के सामने खड़े हो, तुम त्रिलोकी विजयी पिता के सामने वार्तालाप कर रहे हो, तुमको मर्यादा में रहना चाहिए। क्या मर्यादा लंघन किया? उन्होंने कहा, पिताजी तुम्हारे जैसे व्यक्ति अपने को विजयी मानते हैं, पर मैं नहीं मानता। परंतु हिरण्यकश्यपु के भाव में ये बिल्कुल उठपटंग बात कर रहा था। विप्लवागिरा शब्द का अर्थ होता है विगत प्लवाह अर्थ याभ्याम तानी वाक्यानी, जिन वाक्यों से सारे अर्थ निकल चुके हैं, अर्थ रहित वाणी, अनन्विता वाणी, अन्वय नहीं है। उदाहरण के रूप में आपने कहा मुझे दिल्ली प्रसाद खाना है, प्रसाद पाना है। अरे मुझे दिल्ली प्रसाद पाना है, इसका अर्थ क्या है? आप या तो कहोगे मुझे दिल्ली जाना है, या तो कहोगे मुझे प्रसाद पाना है, लेकिन मुझे दिल्ली प्रसाद पाना है इसका कोई अर्थ नहीं बनता। इसको कहते हैं अनन्विता वाणी, बिना सिर पैर की वाणी, उटपटंग वाणी। हिरण्यकश्यपु कहता है यतश्रु विप्लवागिरह, तुम्हारे मुख से प्रहलाद ये उटपटंग वाणी निकलती है, इससे पता चलता है कि तू अभी अभी मरेगा। क्यों? मुमूर्षुणाम ही मंदात्मन, जो नीच बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, मरने वाले होते हैं, वो इस तरह से तुम्हारे जैसे बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाया करते हैं, बिना अर्थ के बातें बोलते जाते हैं। तुम ऐसे बोल रहे हो ना, बिना सिर पैर की वाणी। ननोस्युर विप्लवागिरा, देखो प्रहलाद महाराज जी ने क्या कहा, क्या वाणी बोल दी जो हिरण्यकश्यपु को उठपटांग लगने लगा? कौन सी वाणी? कल आपने सुनी थी, दस्यो नुपुराशन विजित्य लुम्पन्तो एके मन्यन्ते स्वजिता दिशो दशा। कल का श्लोक था ना, जितात्मनः साधु समस्य देहिनाम, जितात्मनः ज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो समूह प्रभवा कुतो परे। तुरंत प्रहलाद जी ने ये उपदेश दिया था। क्या दिया था? पिताजी आप जैसे व्यक्ति अपने आप को अत्यंत विजयी मानते हैं, परंतु मैं नहीं मानता। भवादृशा, आप जैसे। और सबसे पहले वो अपने भीतर जो शत्रु बैठे हुए हैं उन पर विजय तो नहीं पाते। अच्छा, केवल प्रहलाद यहां उपदेश नहीं देते, मेरे ख्याल में तीन चार बार पिताजी को उपदेश दिया। पहला उपदेश क्या दिया था? पिताजी अच्छा यही है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो परिवार का त्याग करके वन में चला जाए। उस समय हिरण्यकश्यपु को थोड़ा थोड़ा क्रोध आया था। दूसरी बार जब पूछा था, सीधा सीधा प्रहलाद महाराज ने नवविधा भक्ति का वर्णन किया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु की पाद पूजा करना, यही सबसे बढ़िया यही कर्तव्य है मेरे पिताजी। हिरण्यकश्यप का पारा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, लेकिन जब प्रहलाद जी के विचारों से उनके मित्र प्रभावित हुए और सारे मित्र मंडली, सारे छात्र समाज कृष्ण भक्ति में तल्लीन होने लगे, तब हिरण्यकश्यप को प्रबल रोष हुआ और बहुत कुपित हुआ। वो आकर के पूछा, साफ साफ पूछा, हे दुर्विनित मंदात्मन कुल भेद कराधमा स्तब्धम मत शासन उद्वृतम नेश्यत्वाद्य यमक्षयम क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयलोका सहेश्वर तस्यमे भेतवत मूढ़ शासनम किं बलवत्यगा। अरे दुर्विनित, अरे मंदबुद्धि प्रहलाद, आज मैं तुझे यमालय को भेजूंगा, जिसके भय से, जिसके भ्रुभंग मात्र से देवता थर्रा उठते हैं, तो उसी के सामने खड़ा हुआ है बिल्कुल भय रहित होकर। तस्य वे भितभत मूढ़ शासनम किं बलोत्यगा, मेरे शासन का अतिक्रमण तुमने किससे शक्ति पाकर के किया है, क्या बल तुझ में है, किसने तुम्हें बल दिया है। प्रहलाद महाराज जी को जब पूछा उनके पिता ने, बिल्कुल साफ साफ उत्तर दिया, न केवलम मे भवतश्च राजन सबै बलम बलिनाम चा परेशाम परे बरे मे स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। पिताश्री, केवल मुझ में बल नहीं है, जिसके बल के बल पर बलवान होकर मैं आपके सम्मुख खड़ा हुआ हूं, दंडायमान हुआ हूं, उन्हीं के बल से आपने त्रिपुर पर विजय प्राप्त किया है। केवल मेरा बल नहीं है पिताजी, आपका भी बल वही है। न केवल मैं भवतस्य राजन, अच्छा केवल आपके भीतर बल, मेरे भीतर बल नहीं है, सबई बलम बलिनाम चापरेशम, जितने बलवान हैं सबके भीतर का बल श्री कृष्ण ही है। बलम बलवत्ताम चाहम काम राग विवर्जितम, भगवान ने कहा सबका बल मैं हूं। ये वृक्ष खड़े हुए हैं उस महाशक्ति के बल पर, शिव प्रलय करते हैं उसी के बल पर, ब्रह्मा सृष्टि करता है उन्हीं के बल पर, विष्णु पालन करता है उन्हीं के बल पर, ये समस्त धरती। अच्छा ये बताओ, एक इसी को ना यदि हम बल नहीं डालेंगे, ये डब्बा यहां से वहां नहीं जाएगा, थोड़ा सा बल चाहिए। ये धरती का वजन कितना होगा, कितना होगा इस धरती का वजन, कितना पानी यहां है, कितने पर्वत हैं, कितनी नदियां हैं, कितने महासागर हैं, सबका वजन कितना होगा। ऐसे वजनदार पृथ्वी को भगवान कई हजार मील के रफ्तार में दौड़ाते, केवल एक धरती नहीं, धरती से लाखों लाखों गुने ग्रह पिंड तारका मंडल, वो जिसके आज्ञा से अक्ष पर भ्रमण करते हैं वो है महाशक्ति संकर्षण। इजेंट इट, सबई बलम बलिनाम चापरेशम, तुम्हारी रगों में, तुम्हारी छाती में एक धुकधुकी है, उसको हृत्पिंड कहते हैं, किसके बल से वो धक धक कर रहा है। अच्छा केवल धक धक करने से तुम्हारे नसों में खून चल पड़ेगा, नहीं चलेगा, किसकी शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से। सबई बलम बलिनाम चापरेशम परे बरे में, पर हो अवर हो, श्रेष्ठ हो निकृष्ट हो, जड़ हो जंगम हो, ब्रह्मा दयो ये न वशं प्रणीत, ब्रह्मा पर शासन करने वाले कृष्ण। ब्रह्मा ने स्तुति करी, गिड़गिड़ाया, नौमिध्यते अभ्र बपुसे तडित्यंबराया गुंजावतंस परिपिच्छ लसन मुखाय वन्य स्रजे कबल वित्र विषाण वेणु लक्ष्म श्रिय मृदुपदे पशुपांग जाय।
ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं,
शंकर स्तुति करते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप विनाशन पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश प्रभो शरणागत मांगत त्राहि प्रभो।
भगवान शंकर स्तुति करते हैं, इंद्र चंद्र बड़े बड़े देवता स्तुति करते हैं, छोटों को कौन पूछता है, कौन पूछता है, इंद्र स्तुति करता है।
बेशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम माया मोहम ध्वस्त रजस्तमस्कम।
बड़े बड़े इंद्र चंद्र वरुण कुबेर भगवान की स्तुति करते हैं। येन वसम प्रणीत यमराज कहते हैं, मेरे दूतों उनके पास मत जाना, उनके 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 सेवकों के पास मत जाना, क्योंकि विष्णु के दूत उनकी रक्षा करते हैं, वहां पर हमारा कुछ भी नहीं चलता। यमराज जी साक्षात कहते हैं। और सुनो, यमराज जी कृष्ण के क्या लगेंगे, क्या लगेंगे, साले साहब लगते हैं जी, साले लगते हैं। सो विचार करो, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः, इसलिए पिताजी मान लीजिए हिरण्यकश्यप पूछेंगे, ये दुश्मन है हरि, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे चाचा जी के, तुम्हारे चाचा जी के हत्यारे हैं, मारा था इन्होंने, वो कैसे हमारे बल हो सकता है। तो प्रहलाद जी कहते हैं, सईश्वर काल उरुक्रम, वो ईश्वर है, वो नियंता है, वो आपको भी नियंत्रण करते हैं, वो ब्रह्मा को भी नियंत्रित करते हैं, काल टाइम फैक्टर वही है, उरुक्रम इतना बड़ा पेड़ बढ़ाया, इतना बड़ा चरण बढ़ाया, आज तक इतना बड़ा चरण किसने नहीं बढ़ाया, एक एक चरण धरती पर, दूसरा चरण ब्रह्मलोक सत्यलोक को भेद करके बिरजा पार करके ब्रह्मलोक तक पहुंच गया, इतना बड़ा डग है किसका, रुक्रमा। पिताजी सब वही है, इसलिए आप असुर भाव का परित्याग करो, आप अपने मन में समता रखो, सभी जीवों के भीतर उस प्रभु का दर्शन करो। और मैं मानता हूं पिताजी, तद्धि अनंतस्य महत समारणम, फूल चंदन देकर के पूजा करना बहुत अच्छी बात है, 56 भोग लगा देना ठाकुर जी को बहुत अच्छी बात है, लेकिन गधे को पानी पिला देना उससे अच्छी बात ज्यादा है। तद्धि अनंतस्य महत समरणम, सभी जीवात्माओं के दुखों को समान रूप से अनुभव कर लेना। प्रहलाद कहते, मैं नहीं कह रहा हूं, हे पिताजी सभी जीवों के प्रति समान बुद्धि रखना, सबकी सेवा करना, वो मैं समझता हूं अनंत की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तत ही, देखो इसका पीछे वाला श्लोक, दो चार श्लोक पहले, तत ही अनंतस्य महत सम अरणम, वो सर्वश्रेष्ठ पूजा है। भगवत गीता में भगवान ने कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवे हस्तिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः यही व तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। यही व तेर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, भगवत वाक्य, ये भगवान भगवत उपनिषद की ये वाणी है। साक्षात भगवान ने कहा, जिसका मन समता में स्थित हुआ है उसने इसी जीवन में स्वर्ग को जीता, माने जन्म मृत्यु के आवागमन पर उसने पाबंदी डाल दी। यही वह तैर जीता स्वर्गो येषाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिति स्थितः। सो पिताजी यही अनंत का सर्वश्रेष्ठ भाव है, यही अनंत की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। क्या आपने सुना नहीं भगवान कपिल मुनि ने अपनी मां से क्या कहा, भगवान कपिल ने कहा, यदि तुम्हारे पास कोई दुखी आया है, दरिद्र आया है, कंगाल आया है, तुमने उनकी सेवा नहीं करी, मंदिरों में विग्रह की सेवा करी, तुम्हारी वो सेवा ठीक वैसा ही है जैसे कोई भस्म में आहुति डालता है बिना अर्थ का,
भस्म में आहुति डालने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए प्रहलाद कहते हैं समदर सितार, गीता में कितने श्लोक संपर है, तद्धि इससे बढ़िया क्या हो सकता है मित्रों, इससे बढ़िया क्या हो सकता, तद्धि अनंतस्य महत समहरणम, और इसी का जीता जगता उदाहरण नामदेव जी महाराज। गंगा सागर से जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वर, सब लेकर के चले गए, रास्ते में जा रहे थे, एक गधा पानी के बिना तड़प रहा था, रास्ता के मार्ग के साइड में एक गधा पानी के बिना तड़प रहा था, प्यासा था, भूखा था, प्राण उनके कंठागत थे, नामदेव भक्त थे, समदर्शन उनके हृदय में प्रतिष्ठित हुआ था, सब लोग को देखे, सब देख करके चले गए, गधा तड़पता रह गया। नामदेव जिस घड़े से पानी लेकर के गए थे उसी घड़े का पानी उस गधे को पिला देते हैं। सबने कहा ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी तपस्या तुमने एक मिनट में समाप्त कर दिया। नामदेव ने कहा जिसके लिए हम जल चढ़ाने जा रहे हैं क्या पता कि वो ये नहीं होगा। और सचमुच मित्रों जैसे उन्होंने जल पिलाया वो गधा नहीं था, वो तो साक्षात शिव संभूत है, साक्षात शिव संभूत है। जल चढ़ा करके क्या करोगे, समदर्शन है। इसलिए आप देखेंगे जितने भक्त जिनको सत्य का साक्षात्कार होता है वो आखिरकार इस समाज में आ जाते हैं सेवा करने के लिए। ये बताओ फूड फॉर लाइफ किसके लिए है, मनुष्य के लिए ही है। गौशाला किसके लिए है, गोरक्षा के लिए ही है। चीनी आदि डाल देते हैं किसके लिए है, चेटा चेटी के लिए है। गीता आदि का वितरण है किसके लिए है, मानव समाज के उत्थान के लिए है। और कहां भगवान आपको मिलेंगे, कहां मिलेंगे, संत मंदिर में कम रहता है, कम क्या रहता है, सन्यासियों के लिए तो नियम ज्यादा है कि तुम मंदिर में अधिक समय बिता नहीं सकते, तुमको बाहर जाना पड़ेगा। तुमने सन्यास लिया है, सन्यास को चरितार्थ करने के लिए जीवों का उद्धार करना पड़ेगा, यही कर्तव्य है, यही सेवा है। समदर्शन, पिता असुर भाव का त्याग करो, मैं ही भोगूंगा, अहम पूर्वम अहम पूर्वम, ना 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 ना, ये असुर भाव है, इसका त्याग करो। इतना कहा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप ने घुराया, फिर भी प्रहलाद अपने धैर्य नहीं छोड़ते, उसी पिता के सामने कहते हैं पिताजी दस्युन पुरासन निर्जित्य लुम्पन्तो, पिताजी आप जैसे व्यक्ति अपने भीतर जो शत्रु है उन पर तो विजय नहीं पाते, सारा संसार पर विजय का डिंडिम घोषणा कर देते हैं कि मैंने संसार पर विजय पाई है, वो पराजित व्यक्ति है। दस्युन पूरा क्षण, वो छह शत्रु हमारी संपत्ति का हरण करते हैं, वो छह शत्रु हमारे सुख संपत्ति का दिन रात हरण करते हैं। इस पर तो आपने सोचा नहीं, केवल आप नहीं, आपके जैसे ही राजा जितने आए और जितने आएंगे, भवाद्रसा एक के माने भवाद्रसा, सबसे पहले इनका विरोध करो, इनका निरोध करो, इन पर विजय हासिल करो। वो शत्रु कौन है, कल अपने क्लास सुना होगा, शत्रु कौन है, कौन है शत्रु, मन समेत छह इंद्रियां, लेकिन ये पक्के शत्रु नहीं है, ये मित्र भी है, ये मित्र भी है ना, ये मन तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, मन तुम्हारा शत्रु भी हो सकता है। जो मन पर जीत पा लिया है मन उसका परम मित्र हो जाता है, पर अजित इंद्रियां जो है, ये जो छह हैं, ये मन समेत अजित इंद्रियां, अजित मन, इनको शत्रु कहते हैं। अच्छा केवल ये शत्रु नहीं, दूसरे पक्ष के शत्रु भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये शत्रु है। इन शत्रुओं ने तुमको पराभूत किया है, आपको नहीं मेरे को भी, मेरे को भी, सब पर इनका विजय है। काम का जिस पर विजय होता है, काम जिस पर अधिकार प्राप्त करता है, उनकी क्या दुर्गति होती है, क्या दुर्गति होती है मित्रों? काम एक शत्रु जिस पर हावी है, उसकी क्या दुर्गति कौन बताएगा? क्या दुर्गति? दुखम काम सुखापेक्षा। ये संसार में भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा दुख है जो काम सुख की अपेक्षा रखता है। ये भगवान की परिभाषा, हम बिल्कुल अपने मन से नहीं बता रहे हैं। और काम विकार से ग्रस्त व्यक्ति परतंत्र होता है, वो स्वतंत्र कदापि नहीं होगा। काम तुम्हारी स्वतंत्रता को खत्म कर देता है, नंबर वन। क्रोध, क्रोध क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध तुमको मोहित करता है, अज्ञान अंधे कर अंधकार की कोठरी में धकेल देता है। काम तुमको परतंत्र करता है, क्रोध तुमको अंधकार में धकेलता है। लोभ दरिद्र सह यह असंतुष्ट, भगवान उद्धव को कहते हैं, उद्धव से, हे उद्धव, वो व्यक्ति दरिद्र है जो असंतुष्ट है, जो लोभी है। कितना भी धन तुम्हारे पास हो, जब तुम लालची हो, जब तुम लोभी हो, तो तुम एक कंगाल हो, तुम एक दरिद्र हो। काम क्रोध लोभ मोह, मोह को कहते हैं अज्ञानता, उस अज्ञानता के कारण तुम संसार में फंसे हुए हो। मोह तुमको संसार देता है, मोह तुमको मोहन के पास नहीं ले जाता, मोह तुमको संसार देगा। मोह मद, मद तुमको अकेला बना देगा, कोई मित्र नहीं देगा। मद माने घमंड, तुम जब घमंडी हो जाओगे, कोई मित्र तुम्हारे पास नहीं आएगा, सबके सामने तुम छोटे हो जाओगे। जब तुम किसको सम्मान नहीं दोगे, तो तुमको भी कोई सम्मान नहीं देगा, मद तुमको छोटा कर देगा। और ईर्षा, मात्सर्य माने, मात्सर्य शब्द का अर्थ होता है, मात्सर्य माने ईर्षा माने, कौन कहेगा? यस, ईर्षा माने, नहीं नहीं, ईर्षा, यस, परोत्कर्ष असहनम मात्सर्यम, माने दूसरों का उत्कर्ष, दूसरों की उन्नति देख करके भीतर जो जलन पैदा होता है, उसको कहते हैं मच्छरता। सोचो ये जलन कहां पैदा हुआ? तुम्हारे दिल में पैदा होगा, दूसरा तो बाद में जलेगा, जल तो रहे वो तुम पहले। ऐसी वाणी बोलिए, मन का अपा खोए, औरन को शीतल करे, आपू शीतल हो जाए। कुपित वाणी बोलोगे, पहले तुम जलोगे, बाद दूसरा जलेगा। तो जलता हुआ व्यक्ति, उसको शांति कहां से मिलेगी, सुख कहां से मिलेगा? अशांतस्य कुतः सुखम, भगवत उपनिषद, कहां सुख मिलेगा? तो ये छह शत्रु तुमको बुरी तरह से परास्त कर रखे हैं। एक भाव ये, दूसरा भाव अभी तक हमने कहा नहीं। दूसरा भाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक। हमारी संपत्ति क्या है? जो दस्यु हमारी संपत्ति को लूटते हैं, वो संपत्ति क्या है? हमारे पास आठ संपत्ति है, ये जन्मजात अधिकार है, प्रत्येक जीवात्मा की आठ संपत्ति, अष्ट संपत्ति, वेदों में इसका वर्णन आता है। इसको आत्मा की अष्ट संपत्ति कहते हैं। क्या है? छांदोग्य उपनिषद, आत्मा अपहत पापमा अपिपासा बिजिघत्स्य विशोक बिजोर विमृत्युः बिजिघत्स सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्या। छांदोग्य उपनिषद का ये मंत्र है, दोबारा सुनो। आठ देखना, आठ संपत्ति इसके साथ युक्त है। आत्मा अपहत पापमा अपिपासा विशोक विमृतु बिज्वर बिजिघत्स सत्य काम सत्य संकल्प सो अन्वेष्टव्यः, इसी का अन्वेषण करना चाहिए। हे छात्र, हे विद्यार्थी, इसी का सदा अन्वेषण करो। तुमने अपने संपत्ति को खो दिया है इन इंद्रियों के पीछे। वाकई प्रहलाद महाराज इसी को लक्ष्य कर रहे हैं। दस्युन पुरासा निर्जित्य लुम्पन्तु, आपने कहा कि आपने देश दुनिया पर विजय पाई है, पर ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये दुनिया को तुम छोड़ दोगे, पर तुम्हारे शत्रुओं को तुम जीत लोगे तो तुम ये अष्ट संपत्ति के मालिक हो जाओगे। छह शत्रुओं ने आठ संपत्तियों का हरण किया। प्रथम है आत्मा अपहत पापमा, आत्मा का प्रथम संपद है उसमें पाप पुण्य का लेस नहीं है। शुद्ध स्वरूप आत्मा उसका प्रथम लक्षण है, प्रथम संपत्ति है, उसमें ना पाप है ना पुण्य है। और इसी पाप पुण्यों के कारण मित्रों हमारे आवागमन का चक्र चल रहा है। हां या ना? हां। इष्टम मिष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्म फलम भवति अत्यागिनाम प्रत्यय न तु संन्यासिनाम क्वचित। जब तक संन्यास नहीं लोगे तब तक आवागमन को कोई माई का लाल नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। इष्टम अनिष्टम मिश्रम त्रिविधा कर्म फलम, पाप पुण्य और पाप पुण्य। परंतु आत्मा की संपत्ति है आत्मा अपहत पापमा, पाप और पुण्यों से रहित है। नंबर वन ये संपत्ति है हमारी। दूसरा अपिपासा, उसमें पिपासा नहीं है, उसमें पिपासा नहीं है, उसमें तरसा नहीं है, उसमें कोई चाहत नहीं है, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सब पढ़ाया था मैंने इस उपनिषद, भूल गए? आत्मा पूर्ण है लेकिन बच्चा जन्म लेते ही क्वा 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 मुझे चाहिए, मां मुझे तुम्हारे छाती का दूध चाहिए, वो पिपासा लेकर के जन्म होता है। और यहां जितना जितना बड़ा होता चला जाता है। सुत वित लोक, सुत वित लोक एषणा तेने कही के चित इन कृतना मलिन। सुत वित लोक एषणा में पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, पूरी जिंदगी। पर आत्मा की संपत्ति क्या है? अपिपास, उसमें पिपासा नहीं है, उसमें तरसा नहीं है, उसमें चाहत नहीं है। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं है। दूसरी संपत्ति हमारी गायब। तीसरा विशोक शोक रहितम, आत्मा शोकाकुल नहीं हो सकता, पर ये इंद्रियों ने हमको शोकाकुल बनाया। हर पल में शोक, हर पल में शोक है, हर पल में शोक। और सबसे बड़ा शोक क्या है? अज्ञानी हो जाना, हमेशा अज्ञान तुमको दुख देगा। कोवा मूर्ख, उद्धव ने पूछा भगवान मूर्ख कौन है, आप बताइए मूर्ख कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव मूर्ख वो है। कौन है मूर्ख? नौ देहादि अहम बुद्धि, जिसके देह में मैंपन है, अहम बुद्धि है, उसी का नाम है मूर्ख। पंडित कोवा पंडित बंध मोक्षविद, बंधन और मोक्ष की विद्या को जानता है, उसको पंडित कहते हैं। तो ज्यों ही शरीर में प्रवेश किया शोकाकुल हुआ, विशोक उसका लाखों योजन दूर चला गया। विशोक विमृत, मृत्यु उसमें नहीं है। सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर अंश जीव विनाशी ममैवांशो जीव लोके, मेरी परा प्रकृति उसमें मृत्यु कहां से होगी, मेरा अंश है। जरा इस पर विचार करिए, वो हमारी संपदा है, वो हमारी संपत्ति है। एक धनवान का बेटा कांगला हो गया, अपहत पापमा अपिपास विशोक विमृत बिजोर, बुढ़ापा नहीं है लेकिन बुढ़ापा हो गया। और क्या? बीजिघत्स, बीजिघत्स माने बीजिघत्स, बीजिघत्स शब्द का अर्थ होता है तृष्णा से सदैव परास्त हुआ। ये चाहिए वो चाहिए, ये खाऊंगा वो खाऊंगा, माने भोग भोग वासनाओं से ग्रसित हुआ। लेकिन शुद्ध जीवात्मा में भोग वासना नहीं होती। और सत्य काम सत्य संकल्प ये दो है। सत्य काम माने वो सदैव कृष्ण की सेवा की चाहत रखता है, कृष्ण सत्य है और सत्य की चाहत। यहां हिरण्यकश्यपु कहता है तू मृत्यु काम है, तू मरेगा, जबकि प्रहलाद सत्य काम है, कदापि नहीं मरेंगे। सत्य संकल्प जो चाहेगा सो होगा। जरा विचार करके देखो, इतनी सारी संपत्ति पर ये सारे दसों ने लूट लिया, लेकिन जितात्मनः ज्ञस्य समस्य देहिनाम साधो, पर जो साधु है, बुद्धिमान है, जितात्मा है, तो समस्त देहधारियों में वो बुद्धिमान है, वो ही वाकई संसार में विजेता है। हे पिताजी, इसी प्रकार से आप अपने मन को समता में रखो। जितात्मनः ज्ञस्य समस्य देहिनाम साधु समोह प्रभवा, और साधु जो होता है वो मोह से मोहित नहीं होता, ये शरीर देहात्म बुद्धि से ग्रसित नहीं होता। ये जो काम क्रोध लोभ आदि हो गए वो स्वमोह प्रभवा, अपने मोह के कारण हुए, अपने अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो गए, पर साधु इससे प्रभावित नहीं होता। तो हिरण्यकश्यपु को यह अनुभव होता है कि प्रहलाद ये सारा भाव हमको समझा रहे, ये बल भी उस हरि का है, मुझे समता पढ़ा रहा है और मुझे कह रहा है पिताजी ये संसार में कोई बैर नहीं है, कोई किसी का शत्रु, कोई किसी का मित्र नहीं है, अज्ञान प्रभवा है। और सचमुच मित्रों माताओं, ये संसार में जो भी वस्तु आप देख रहे हो वो वस्तु हमारी एक भी नहीं, एक चौवन्नी भी हमारी नहीं है। ये चौवन्नी हमारी ना थी ना है, पर आपस में हम लड़बिड़ करके मरने लगे। इसलिए भक्तों मित्रों, जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि ये संसार मेरा नहीं है, ये जिसका था उसका रहेगा, तो हम आपस में शत्रुता क्यों करेंगे। इसलिए प्रहलाद कहते हैं ये विज्ञान है पिताजी, ना किसी का कोई शत्रु है, ना किसी का कोई मित्र है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबके खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सभी संत समदर्शिनः आहा हा, तब हिरण्यकश्यपु की ये क्रोध आता है, व्यक्तम तुम मर्तु कामोसि जो अतिमात्रम विकथ्यसे, अतिमात्रम। तो प्रहलाद जी को इस तरह से उठपटांग उत्तर हिरण्यकश्यपु दे रहा है, जबकि प्रहलाद जी ने बिल्कुल साफ साफ उत्तर दिया। प्रहलाद जी के ये चार श्लोक ये महान विद्वानों के लिए संपत्ति के समान है, हमारे पूर्व संपत्ति को ये श्लोक उजागर कर देते हैं। लेकिन माया के कारण, दैवी माया के कारण सभी मोहित है, सभी मोहित है। हिरण्यकश्यपु जैसे व्यक्ति, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो, दैवी माया से सभी ग्रसित है। हिरण्यकश्यपु बेचारा क्या कर सकता है, देहात्म बुद्धि में ग्रसित था, महामाया का प्रभाव था। इसीलिए नवरात्रि के समय असुरों को विशेष से उपदेश दिया जाता है, आप मैया से प्रार्थना करो, आप जगदम्बा माता से प्रार्थना करो, स्तुति करो, वो तुम्हारा मार्ग को स्पष्ट कर दे। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान की शरण में तो आना चाहिए, पर इसी जगत की जो रखने वाले रक्षा करती है, क्या उनसे स्तुति नहीं करनी चाहिए। जब तक मां कुपित रहेगी तब तक आप कैसे जा सकते हैं। भगवान का शरणागत होना इसका अर्थ होता है भगवान के परिवार का शरणागत होना। भगवान की स्तुति करनी पड़ेगी, बलराम की स्तुति करनी पड़ेगी, राधा रानी की स्तुति करनी पड़ेगी, नंद जसोदा के परम चरणों में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, शंकर के चरणों में गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और अंबा मैया देवी शैलपुत्री के सामने भी स्तुति करनी पड़ेगी। हे माँ, कृपा करके इस अज्ञान मोह पटल को तुम विदुरित कर दो, तुम इनको नष्ट कर दो, जिससे मैं प्रभु के पास, प्रभु के सानिध्य प्राप्त कर सकूं। आइए, समय हो रहा है नवरात्रि के अवसर, उसी माँ से स्तुति करते हैं, जो माँ, जिस माँ की कृपा से हमारे अज्ञान का पर्दा नष्ट हो सकता है और भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। सबको याद होगा, यदि याद नहीं है तो मेरे साथ बोलिए। आई गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते, थोड़ा मृदंग बजाओ। ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरस गिरिवर बिंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते ऐ गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर बिंध्य शिरोधि निवासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते हरे कृष्ण 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 भगवति हे सिति कंठ विन भगवति हे सिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी कर्म्य कपर्दिनी शैल सुते हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सभी गाइए भगवति हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक परदिनी शैल सुते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वे शैलपुत्री वे शारदा अंबिका वे हम सब पर अपनी कृपा अपने अनुकंपा आशीर्वाद बनाए रखे। वो हमारे भीतर जो माया है जो पर्दा है जो अज्ञानता है जिनके द्वारा ये घटित हो रहा है वो माता कृपा पूर्वक हमारे इस अज्ञानता के पर्दा को छिन्न भिन्न कर दे और कृपा कर दे और उनके आशीर्वाद से हमें प्रभु के कृपा प्राप्त हो जाए प्रभु का दर्शन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम।